शिव को थे खुद में समाए। आओ तुमको कहानी सुनाए।
निराकार शिव ओम शांति। आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत ही सुखमय, शांतिमय और परमात्मा की अथाह शक्ति का अनुभव करते रहे। सारा साल आपके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। बाबा के दिल में आप सभी हो और आपके दिल में हमेशा बाबा रहे। बाबा के छत्र छाया में आप हमेशा उड़ते और उड़ाते रहे, यही हमारी शुभकामना है। और जब भी जनवरी मास आता है तो दो बातें हमेशा याद आती है। एक याद आता है कि रेजोल्यूशन, कि नया साल आ रहा है, क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना है। एक उमंग, उत्साह बना रहता है। पुराना वर्ष गया और नया वर्ष आ रहा है, नए सिर से हम कुछ शुरू करें, नया परिवर्तन अपने जीवन में लाए। ये उमंग, उत्साह हर एक के दिल में बना रहता है। दूसरी बात है, जब जनवरी मास आता है ब्रह्मा बाबा की बहुत याद आती है। भले हम साल भर बाप दादा को याद करते जरूर है, लेकिन जनवरी मास आते ही ब्रह्मा बाबा की याद थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि उनके जैसे बनने की प्रेरणा हम लेते हैं, उनके कदम चिन्हों पर चलने की प्रेरणा हम लेते हैं। देश विदेश के सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मन कुलभूषण बाबा को बहुत याद करते हैं और साथ साथ अथाह शक्ति की अनुभूति भी करते हैं, और बाबा की मदद भी हम हर एक करते जरूर है। तो इसीलिए चलिए इस साल हम कुछ सभी मिल करके हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को फिर से दोहराएं, फिर से याद करें, ताकि फिर से हम बाबा जैसे बनने की प्रेरणा लें। क्योंकि बाबा ने जो भी करके दिखाया उनको हमें फॉलो करना है, फॉलो फादर। उनको फॉलो करके हमें उनको प्रत्यक्ष करना है। तो एक छोटा सा प्रयास है, विभिन्न जो लिटरेचर हमारे संस्था में है ब्रह्मा बाबा के बारे में, तो उसको मिला करके अलग अलग लिटरेचर से, अलग अलग किताबों से जो प्रेरणादायी प्रसंग है उसको लेकर के हम सब मिल करके उसको याद करें, उसको पढ़े, उसको सुने। कि इन सभी लिटरेचर से जो लिया हुआ है हम ये पढ़ेंगे और सुनेंगे भी, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ करके अपने शब्दों से उसको वर्णन करने की कोशिश करूं तो शायद वो डाइल्यूट हो जाए। इसीलिए इन सभी किताबों से प्रसंगों को लेकर के हम पढ़ेंगे। ये एक हम कह सकते हैं रीडिंग सेशन है, और साथ साथ हम जब सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो जरूर हमें प्रेरणा जरूर मिलता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। बाबा की जीवन कहानी इस प्रकार से है। आज तक संसार में अनेक अनेक वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां सुनाई गई है, परंतु ये एक ऐसा अनोखे जीवन का मानव का जीवन वृत्तांत है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। ये एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन कहानी है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सका। ये जीवन कहानी क्या है? ये नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है जिसे कुछ लोगों ने वर्तमान जीवन में अपनी आंखों से देखा है और उनके मुंह से जो सुने हैं उसको यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत जुड़े हुए हैं और इसके साथ स्वयं दुख हर्ता सुख अर्था परमपिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र संबद्ध है। इन वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा निर्देश दिया है और अनेकानेक नर नारियों के जीवन को महान बनाया है। अतः स्वाभाविक है कि इस जीवन कहानी को सुनने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दिशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से अन्य धर्म तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण लोगों का खान पान रहन सहन तमोप्रधान तथा भ्रष्ट हो चुका था। लोग भक्ति करते थे परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उनमें लोभ छल कपट काम क्रोध मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी। जितना लोगों के पास धन था उतना उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था तथा वे अपने पति की वासना तृप्त ही के लिए थी। चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वो परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्रायः अशिक्षित सी रहती थी और माताएं प्रायः बड़े 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 घूंघटों में मुंह छुपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी। या तो ये तो हमेशा घरों में चार दीवारों में ही रहा करती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार नहीं था, ना ही उन्हें सन्यासी बनने का कोई अधिकार था। ब्रह्मचर्यवत व्रत पालन नहीं कर सकते थे। घोर कलियुग की इस वेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंदी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निंद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वो अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे सामाजिक परिसर में एक आशा की किरण थी, तो वो है ब्रह्मा बाबा। उनका बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व था। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराली व्यक्ति थे, जिनसे लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वो साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच में जो रहे हो, वो सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति उनके कद बुद्ध और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनोहरता थी, मनमोहकता थी, और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सद्भावना थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन चैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसीलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के बहुत ही स्नेही थे। एक मध्य वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चतुराई, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई विरला ही होता है, जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय हो और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए अथाह प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, हमारे ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभचारी भगत के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राज्य कुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज्य दरबार में भी आमंत्रित होते थे। उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंधेरी अपनी बहु बेटियों को हीरे जवाहरात दिलाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती थी। कहते थे, लकी राम बाबूजी, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों में वही दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार में परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते थे, लकीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई है कि हमको तो राजा बना दिया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा। राजापन के सभी संस्कार तो आप में है, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो सब एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को दो ताज वाला दैवी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करवा रहे थे। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहेब अच्छी तरह समझ लेते थे और वे अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। इन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यावहारिक जीवन में भी वे अपने ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इन कार्य में किसी के नकल नहीं करते थे। उनका जो भी डिजाइन होता था वह अपना ओरिजिनल होता था। और दादा के जीवन में उनके अनन्य भक्ति भाव और संयम नियम था। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने बेडरूम में और अपने तकिए के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखे या जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही श्री नारायण उनके सामने आ जाए। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र पर प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रीकरण किया होता था। दादा को ये चित्र बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसा समझते थे कि ये स्त्री का अपमान है, स्त्री को नीचा दिखाने का दरिया है, या दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जा रहा है। दादा, स्त्री के स्थान को पुरुष के स्थान से नीचे नहीं समझते थे, इसीलिए विचित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासीपन अंकित ना हो, बराबर, दोनों बराबर हो। दादा का खान पान और रहन सहन बहुत सात्विक था। जब कभी वे मित्रों को बोझ या पार्टी देते थे, उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए बोझ में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कहीं बार सिगरेट, शराब आदि को न पाकर विनोद पूर्ण वो बहुत ही मजाकीय तरीके से दादा को कहते थे, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते थे, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़ी छोड़ेंगे, थोड़ी भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उसके बदले आपको हीरे देते हैं। तो दादा को बहुत नशा था अपने रहन सहन, अपने सात्विकता के बारे में। ये सुनकर लोग बहुत हंसते थे और दादा को, दादा लेखराज को बहुत गुरुओं के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। उन दिनों दादा के अपनी गुरु में भावना भी बहुत थी। उन्होंने 12 गुरु किए हुए थे। एक बार एक गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगाई। प्रातः और सायंकाल दोनों टाइम गुरु के बेडरूम में वहां गुलाब जल छिड़का करते थे। दादा अपने ही हाथ से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़क कर आते थे और अगरबत्ती भी जलाकर आते थे। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता था। कभी आवारा कुत्तों की आवाज गुरु को आराम या एकांत में खलल ना डाले, विशेषकर इस ख्याल से वे एक पहरेदार रखते थे। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपए का एक आम मिलता था, तो भी गुरु के लिए वो आम लेके आते थे। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। सायंकाल सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोजन था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने यशोदा जी, तो दादा की लौकिक पत्नी थी, उनको कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। यशोदा जी बोले, इस अवसर पर कैसे जा सकते हैं आप? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करें? यशोदा जी फिर वो कहती है, उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। तो बाबा को गुरुओं के प्रति अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने जो भी बोला कभी भी नकारते नहीं थे, उनको पूरी तरह फॉलो करते थे। उनकी आज्ञा सिर माथे पर होता था, उनको पूरी तरह वो फॉलो करते थे और भक्ति की पराकाष्ठा भी बहुत ज्यादा था। दादा की भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधु के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का सा रूप देते थे। उस अवसर पर वातावरण को धार्मिक बना लेते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न किया करते थे। दादा की लौकिक बहू जो ब्रिजेंद्रा दादी है, वो बताते हैं कि एक बार बाबा जब अपने जवाहरात के व्यापार केंद्र में अपनी गद्दी पर बैठे जवाहरात की एक पुड़िया का मूल्यांकन कर रहे थे, मतलब बहुत सारे जो हीरे थे वो सारा कुछ उसका मूल्यांकन कर रहे थे, उसको देख रहे थे, तो उन्हें अचानक ही कहीं जाना पड़ गया। दादा अपनी गद्दी के सामने रखे शीशे जो भी है उसको बॉक्स पर में रख करके वहां ही छोड़कर वहां चले गए। उस ख्याल से चले गए ताकि उनको था कि कोई चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि दुकान में जो भी कार्यरत थे उन पर दादा का पूरा विश्वास था। परंतु उस दिन अचानक ही एक सुनहार के दो बच्चे वहां आ गए, जो यूजुअली जो सुनहार ऑर्डर लेते थे जेवर बनाने के, उनके बच्चे वहां आ पहुंचे। तो उन्होंने वहां जो भी थोड़े बहुत हीरे पड़े थे उन्होंने ले लिया अपने जेब में डाल करके वो चले गए। फिर थोड़े समय के बाद जब दादा आए वहां उसके दुकान में आए तो देखा कुछ हीरे वहां नहीं थे, तो दादा ने उनको किसी के ऊपर शक, दुकान में जो भी थे उनके ऊपर शक नहीं आया, लेकिन केवल इतना मालूम किया कि उनके अनुपस्थिति के मौके पर वहां कौन आए थे, गद्दी पर कौन आया था, दुकान को गद्दी कहते थे, उस पर वहां कौन आए थे। दुकान में जो भी थे लोग उन्होंने कहा कि सुनार के दो बच्चे यहाँ आए थे, बाबा चुपचाप वहां उनके घर चले गए। पहले उनके दुकान में गए और वहां देखा उनके पिताजी और उनका बड़ा बेटा दुकान में थे, और घर चले गए और घर में छोटे बेटे को बहुत प्यार पुचकार से उनको पूछा, बेटे बच्चे तुम्हारा बड़ा भाई जो हमारे दुकान पर तुम्हारे साथ आया था कहता है कि हीरों की पुड़ियों में से हीरा तुम दोनों ने ले लिया है, वे दे दो। ये सुनते ही वो बच्चा हक्का बक्का रह गया और एक क्षण में वो जाकर के वो पुड़िया लेके आया और कहा वो मुझे तो कहता था कि बाबा को मत बताना और उसने खुद बता दिया है आपको। वो ऐसे कहते हुए चुपचाप वो पुड़िया बाबा को दे दिया। बाबा ने फिर प्यार से उस बच्चे को पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस लिए उठा लिए थे। उसने बोलेपन से उस बच्चे ने कहा, हमने सोचा था बाबा कि इन्हें अलवाई के हवाले कर आज अच्छी तरह हम खूब पेट भर के मिठाई खाएं। इस सारी वार्तालाप में बाबा ने एक बार भी ना उसे डांटा, ना उससे क्रोध किया, ना उस पर हाथ उठाया, बल्कि उसे खूब मिठाई खिलवाई और कहा, देखो फिर कभी भी चोरी नहीं करना, वरना पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। यदि तुम्हारे पिताजी को मालूम हो जाए कि आपने चोरी की तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। ऐसे अनेक वृत्तांत इस बात को सूचित करते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ही बाबा बहुत धीरज और शांति से व्यवहार करते थे। इन वृत्तांतों से हमें पता चलता है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्यों चुना या दादा लेखराज को क्यों चुना अपने अवतरण के लिए। ऐसे बहुत सारे गुण दादा लेखराज में थे। तो आज जो भी हमने सुना इसका कंटिन्यूएशन फिर कल भी हम सुनेंगे। तब तक ओम शांति।